आज जो हम कार्यक्रम लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और टॉपिक है कैश बुक। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस अंशुल खरबंदा जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू सो मच। सो लर्नर्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैश बुक के बारे में कि कैश बुक क्या है। तो जैसे जैसे बिजनेस जो है वो हमारा ग्रो करता है, जो हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब हमें जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसमें हमें रिकॉर्ड करना बहुत ही हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इतने बढ़ जाते हैं कि वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम मैन्युअली उतने ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर सकें। तो इसलिए हम काफी सारी बुक्स में जो है इसको डिवाइड करते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ जर्नल्स हैं जो मेंटेन किए जाते हैं बिजनेस यूनिट के द्वारा, जहां इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इनके नेचर के हिसाब से। जैसे कि कैश बुक में हम कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्स बुक हम बनाते हैं जिसमें हम क्रेडिट सेल्स गुड्स की जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक बनाते हैं जहां पे हम क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं गुड्स की, और इसी तरह से। सो आज की इस चर्चा में हम जो हमारा आज का चैप्टर है लेसन कैश बुक, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस डिस्कशन के बाद आप जान पाएंगे कि कैश बुक का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक्स कौन सी हैं, सिंपल कैश बुक बनाने का क्या मतलब है, और एक कैश बुक बैंक कॉलम के साथ किस तरह से बनाई जाती है, और पेटी कैश बुक क्या होती है और किस तरह से हम उसको प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले लर्नर्स हम ये जानेंगे कि कैश बुक का मतलब क्या होता है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो सपोज आपको आपकी पहली सैलरी जो है वो आपके एम्प्लॉयर से मिली, और उसी के साथ साथ आपने कुछ पैसा अपने दोस्त को भी दिया हुआ था उधार, वो भी आपको वापस मिल गया। अब इसमें से कुछ पैसा आपने खर्च किया, आपने नए कपड़े खरीदे, अपने लिए एक मोबाइल फोन खरीदा, अपने फ्रेंड्स के साथ आप घूमने गए और आपने कुछ पैसे वहां भी खर्च किए। इसके साथ साथ आपने घर में बच्चों के लिए कुछ तोहफे खरीदे और सभी को अपनी एक नोटबुक में रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया। तो जो भी आपने महीने भर का आपके पास पैसा आया और जो भी आपने महीने भर खर्चा किया, उस सबको आपने अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लिया, और मंथ के एंड पे आपने सोचा कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं ये मुझे जानना चाहिए, इसलिए आपने कैलकुलेट किया अपनी नोटबुक में कि कितना बैलेंस आपके पास रिमेनिंग है। तो जब हम इस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, जब हम जो ट्रांजैक्शंस जो भी हमने लेन देन किए हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, अगर इसी तरह से हम इसको एक सेपरेट बुक बना के रिकॉर्ड करें जहां पे हम डिफरेंट आइटम्स ऑफ रिसीट्स और डिफरेंट आइटम्स ऑफ पेमेंट्स को रिकॉर्ड करें, तो इस तरह की जो बुक होती है उसे हम कैश बुक कहते हैं। तो लर्नर्स, कैश बुक जो है वो क्या है? कैश बुक एक बुक ऑफ अकाउंट है जिसको हम मेंटेन करते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि रिसीट या फिर पेमेंट ऑफ कैश जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। ये भी एक तरह से एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कैश ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, और लेजर में भी इसको हमें जरूरत नहीं होती कि हम इसे रिकॉर्ड करें, क्योंकि कैश बुक से जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ कैश बुक की बात करें तो सिंपल कैश बुक होती है, बैंक कॉलम कैश बुक होती है, और पिटी कैश बुक होती है, जो इसके तीन मेन क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले लर्नर्स हम सिंपल कैश बुक के ऊपर बात करेंगे। तो सिंपल कैश बुक की अगर हम बात करें तो ये खाली कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स जो हैं उनको रिकॉर्ड करती है। इसमें दो साइड्स होती हैं इसकी, एक डेबिट साइड होती है और दूसरी जो है वो क्रेडिट साइड होती है। तो जो भी हमारी कैश रिसीट्स होती हैं वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं, यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी डेबिट साइड होती है, और जो कैश पेमेंट्स होती हैं वो सभी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं, या फिर जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो सिंपल कैश बुक में एक ही अमाउंट का कॉलम होता है, एक डेबिट साइड पे होता है और दूसरा जो है वो क्रेडिट साइड पे होता है, दोनों साइड पे एक एक कॉलम होता है। तो फॉर्मेट अगर आप देखना चाहें तो आपकी बुक्स में भी आप देख सकते हैं, पेज नंबर 90 पे आपको फॉर्मेट ऑफ अ सिंपल कैश बुक दिया हुआ है। और इसकी अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें डेट का कॉलम है, तो डेट के कॉलम में हम ईयर एंटर करते हैं, मंथ एंटर करते हैं जिस दिन हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, और ये सभी चीजें हम यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हम एंट्री करते हैं वो हम पर्टिकुलर्स कॉलम में करते हैं। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम नेम ऑफ अकाउंट लिखते हैं, जिस भी अकाउंट के हेड के अंडर हम या तो हमें पैसा रिसीव हुआ है या फिर हमने पेमेंट की है जिसके बिहाफ पर, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो हमारा वाउचर नंबर होता है। तो वाउचर होता क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारे ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है उसे हम वाउचर कहते हैं, जो प्रूफ करता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है। वो कोई बिल हो सकता है, कोई इनवॉइस हो सकता है। तो हर एक वाउचर में हम देखते हैं कि कोई ना कोई सीरियल नंबर भी दिया होता है, तो यहाँ पे हम उसी वाउचर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम हम देख रहे हैं वो LF वहां पर लिखा हुआ है। LF का मतलब है लेजर फोलियो, और इस कॉलम में हम वो पेज नंबर रिकॉर्ड करते हैं अपनी लेजर बुक का जहां पे ये एंट्री हमने लेजर में पोस्ट की है। फिर जो नेक्स्ट कॉलम है वो अमाउंट का कॉलम होता है। अमाउंट कॉलम जो डेबिट साइड में जितना हमारा कैश रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, और क्रेडिट साइड में जो हमने जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है या जो हमने कैश पेमेंट करी है वो अमाउंट हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद लर्नर्स जानना जरूरी है कि कौन से स्टेप्स होते हैं जो सिंपल कैश बुक बनाने के लिए हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि डेबिट जो साइड होती है पर्टिकुलर्स कॉलम की, जहां पे नेम ऑफ अकाउंट लिखा होता है और जहां से कैश हमें रिसीव हुआ है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से जो हमारा क्रेडिट साइड है वहां पे भी हमारे पास पर्टिकुलर कॉलम है, जहां पे हम वो नाम लिखते हैं, वो अकाउंट का नेम लिखते हैं जहां से हम जिसका हमने कैश पे किया है या फिर उसे रिकॉर्ड किया है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है अमाउंट कॉलम जो डेबिट साइड पे है उसमें अमाउंट ऑफ कैश रिसीव जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड पे अमाउंट ऑफ वो अमाउंट कॉलम क्रेडिट साइड का जहां जो हमने कैश पे किया है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद लर्नर्स जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जो एंड ऑफ द पीरियड जिसके लिए हम ये बना रहे हैं, जो टोटल होता है डेबिट साइड का, डेबिट साइड के कैश बुक का, उसको हम जो क्रेडिट साइड का टोटल होता है उसके साथ हम उसे कंपेयर करते हैं, और अगर कोई डिफरेंस है तो उसे हम जो क्रेडिट कैश बुक का क्रेडिट साइड है उसे एंटर करते हैं पर्टिकुलर कॉलम्स में एज बैलेंस कैरिड डाउन। तो सिंपल कैश बुक के केस में जो डेबिट साइड है वो जनरली हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड से ज्यादा रहती है, क्योंकि पेमेंट जो है वो ज्यादातर हमारा जो रिसीव्ड कैश होता है, जो हमारे पास अवेलेबल कैश होता है, उससे एक्सीड नहीं करती है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम अमाउंट कॉलम में लिखते हैं, और जो टोटल होता है दोनों ही साइड का वो इक्वल हो जाता है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा क्रेडिट साइड का वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाता है जो नेक्स्ट पीरियड है उसके लिए, और उसको हम एज बैलेंस ब्रॉट डाउन करके डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में नेक्स्ट पीरियड में मेंशन करते हैं। सो लर्नर्स, ये कुछ स्टेप्स थे जो हम फॉलो करते हैं जब हम सिंपल कैश बुक बनाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि किस तरह से हम सिंपल कैश बुक बनाते हैं। अगर आपके पास में आपकी बुक्स हैं तो आप जरूर उन्हें खोल लें, और पेज नंबर 91 पे आप दे सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, डेट इसमें दिया 2011 की एंट्रीज हैं और जो डिटेल्स हैं दी हैं और अमाउंट दिया हुआ है। लिखा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक ऑफ मिसेस अशोक ट्रेडर्स। सो डिसम्बर 1 में कैश इन हैंड 30,000 रुपीज है, डिसम्बर 5 कैश रिसीव्ड फ्रॉम तन्वी 12,000 रुपीज, डिसम्बर 8 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2,500, डिसम्बर 10 फर्नीचर परचेस्ड 7,000. December 14, goods sold for cash 16,500. December 18, purchase goods from Mithun for cash 26,000. December 22, cash paid to Yash 3,200. December 25, goods sold to Vineet for cash 18,700. December 28, cash deposited into bank 6,000. Rent paid on December 34,000 and salary paid on December 31, 7,000. So, ये कुछ हमारे transactions हैं जो हमें record करने हैं Messrs. Ashok Traders के cash book में. So, हमें जो cash मिला है, जो हमारा इसमें दिया है cash in hand 30,000, तो अगर हम देखें तो एक तरह से ये हमारे लिए opening balance है. उसके बाद जो नेक्स्ट दिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम तन्वी 12,000 रुपीस, तो इसको भी हम रिसीट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे जहां पे हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन के जो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कह लें या फिर हम उसको ओपनिंग बैलेंस कह सकते हैं, जो कैश इन हैंड 30,000 वो हमने रिसीट साइड पे लिखा है क्योंकि वो हमारे पास उतना पैसा है. उसके बाद जो तन्वी से हमें रिसीव हुआ 12,000 रुपीस वो भी हम रिसीट साइड पे लिखेंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है 2,500, तो क्योंकि अब ये पेमेंट है तो इसको हम पेमेंट साइट पे लिखेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फर्नीचर परचेस्ड. जब हमने फर्नीचर परचेस्ड किया है 7,000 रुपीस का, तो इसके लिए भी हमने पेमेंट की होगी और क्योंकि एक पेमेंट है तो इसको हम पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड करेंगे. फिर नेक्स्ट जो है वो है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो जब हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, सेल किए गुड्स को 16,500 रुपीस के, जब भी हम कोई चीज बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है, तो इसको हम रिसीट साइड पे 16,500 रुपीस रिकॉर्ड करेंगे. फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिथुन फॉर कैश 26,000. अब हमने 26,000 की परचेजेस करी है, परचेज करी है तो हमने पैसा दिया है उसके लिए, तो इसको हम पेमेंट साइड पे 26,000 रुपए यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट है कैश पेड टू यश, अगेन पेमेंट है हमारे लिए, तो हम 3,200 रुपीज को पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड टू विनीत फॉर कैश, और इसका अमाउंट है 18,700. गुड्स हमने सेल किए हैं और जब हम सेल करते हैं तो हमें पैसा रिसीव होता है, इसीलिए ये जो अमाउंट है इसको हम रिसीट साइड पे 18,700 रुपीज मेंशन करेंगे. उसके बाद लर्नर्स जो नेक्स्ट एंट्री है वो है रेंट पेड. 4,000 रुपीज रेंट पे किया है, ये हमारी पेमेंट है इसलिए हम इसे पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट है हमारा सैलरी पेड. सैलरी हमने 7,000 रुपीज पे की है और क्योंकि ये भी पेमेंट है इसलिए हम इसे पेमेंट साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे अपनी सभी पेमेंट्स को. इसके बाद हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे. तो जब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा डेबिट टोटल है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कैश बुक में ज्यादातर जो डेबिट टोटल है वही ज्यादा होता है क्योंकि हमारी रिसीट्स जितनी होंगी उससे ज्यादा हम पेमेंट नहीं कर सकते. तो हम 77,200 जो हमारा रिसीट साइड का टोटल है वो आ रहा है और जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो थोड़ा कम आ रहा है और जो बैलेंसिंग फिगर है, जो बैलेंस वहां पे आ रहा है क्रेडिट साइड पे, वो 21,500 रुपीज है जिसको कि जो लास्ट डे है दिसंबर 31st को लास्ट डे है तो उस डेट पे बैलेंस कैरेट डाउन करके 21,500 जो बैलेंसिंग फिगर है उसको वहां पे रिकॉर्ड कर लिया गया है. और फिर जो नेक्स्ट डे है, जो क्योंकि हम अकाउंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे जनवरी 1st को इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 21,500 रुपीज यहाँ पर लिखा जाएगा जो कि हमारा नेक्स्ट जो मंथ है उसके लिए ओपनिंग बैलेंस होगा. सो लर्नर्स, आपने देखा कि किस तरह से हम जो सिंपल कैश बुक है उसको हम बनाते हैं और जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं. सो इसके बाद लर्नर्स हम देखेंगे कि जो दूसरी दो तरह की कैश बुक है जिसपे हमने बात करी, एक तो हमने सिंपल कैश बुक की बात करी थी, दूसरा हमने बात करी थी कि बैंक कॉलम कैश बुक भी एक होती है और तीसरा पेटी कैश बुक होती है. अब हम जानेंगे कि बैंक कॉलम कैश बुक क्या होती है और सबसे पहले ये जानेंगे कि बैंक कॉलम कैश बुक हम क्यों बनाते हैं. तो जब जो नंबर हम ऑफ हमारे जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें कई सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हम थ्रू बैंक भी करते हैं, क्योंकि सभी बिजनेस यूनिट्स को हम देखते हैं उनका बैंक में अकाउंट होता है, क्योंकि उससे उनको कन्वीनियंस मिलती है काम करने में, उनको उनको फैसिलिटेट करता है बैंक। तो इसीलिए हर किसी बिजनेस यूनिट का बैंक में अकाउंट होता है। अगर जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे बिजनेस यूनिट ग्रो करती है, बढ़ती है, फैलती है, तो जो नंबर ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़ते जाते हैं, और तब ये जरूरी हो जाता है कि बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक को बनाया जाए। इसलिए एक अलग बुक हो जिससे कि हम जिसमें हम बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। बेहतर ये समझा गया कि एक कैश बुक में ही एक बैंक कॉलम को ऐड कर दिया जाए, जो कि एक सिंपल कैश बुक होती है उसी में एक बैंक कॉलम को ऐड कर दिया जाए, दोनों ही साइड पे, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। तो इस तरह की जो हमारी बुक बनी इसे बैंक कॉलम कैश बुक कहा गया। जो भी पेमेंट्स बैंक में की गई हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं, और जो भी विड्रॉल्स हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक के। जो फॉर्मेट है बैंक कॉलम कैश बुक का वो जो हमारी सिंपल कैश बुक थी उसी की तरह है। सबसे पहले डेट का कॉलम है, फिर मतलब डेबिट साइड पे हमारी रिसीट्स हैं, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम है, फिर पर्टिकुलर्स है, फिर लेजर फोलियो है। उसके बाद अमाउंट के लिए हमारे पास दो कॉलम है, एक पहले वाले कॉलम में हम कैश लिखते हैं, दूसरे वाले कॉलम में हम बैंक लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा पेमेंट साइड है वहां पे भी डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स का कॉलम है, लेजर फोलियो का कॉलम है, और अमाउंट के लिए उसके बाद दो कॉलम है जो कि जिसमें कि पहला कैश का है और जो सेकंड कॉलम है वो बैंक का है। तो जो भी पेमेंट हमें बैंक से रिसीव हुई है या हमने बैंक को दी है उसे हम बैंक के कॉलम में एंटर करेंगे, और जो भी पेमेंट हमने कैश में रिसीव करी है या फिर पे किया है उसे हम कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो अकाउंटिंग टेक्निक है उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। पेमेंट जब हम कैश से करते हैं या हम चेक से करते हैं, तो जब जैसा कि हमने बोला कि जब भी पेमेंट चेक से होगी उसे हम बैंक कॉलम में दिखाएंगे, और जो कैश में होगी उसे हम कैश कॉलम में दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे। उसके बाद इसी तरह से जब हम कैश रिसीव करते हैं, या अगर हम चाहे कैश रिसीव करें या फिर हम चेक रिसीव करें, अगर हम चेक रिसीव करेंगे तो उसे हम बैंक कॉलम में रिसीट्स में साइड में दिखाएंगे, जो हमारा डेबिट साइड है, और अगर हमने कैश रिसीव किया तो उसे हम कैश कॉलम में दिखाएंगे डेबिट साइड पर ही। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम ये अगर हम इसको एक सिंपल ट्रांजैक्शन की तरह भी देखें कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो हम देख रहे हैं कि इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक तो हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा जो है हमारा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये जो एंट्री है इसे हमें कैश कॉलम के डेबिट साइड में भी लिखना होगा और बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में भी लिखना होगा, क्योंकि कैश विड्रॉ हुआ है तो बैंक में तो पैसा कम हुआ है इसलिए उसे हम क्रेडिट करेंगे, और कैश क्योंकि विड्रॉ किया गया है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, दोनों साइड को हम इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही अकाउंट जो है वो इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, जो कैश बुक है या कैश अकाउंट और दूसरा जो है हमारा बैंक अकाउंट। और जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है वो भी ये कहता है कि एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो हमारे उसके साथ में दूसरा अकाउंट है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इस केस में हम देखते हैं कि कैश इन हैंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है और कैश जो बैंक में है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए जो क्रेडिट साइड है पर्टिकुलर्स कॉलम का वहां पे हम बाय कैश लिखेंगे और अमाउंट जो हम एंटर करेंगे वो हम बैंक कॉलम में एंटर करेंगे डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में हम टू बैंक लिख के वहां पे हम एंट्री को पास करेंगे कैश कॉलम में। इस ये जो एंट्री है इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कि एंट्री जो है हमने कैश बुक के दोनों साइड में करी है और एक मतलब दोनों साइड करी है, कैश बुक के भी साइड में करी है और जो बैंक कॉलम है उसके साइड में भी करी है, और इस एंट्री को हम लेटर सी लिख के भी डिनोट करते हैं। जो हम लेजर जो हमारा लेजर फोलियो कॉलम होता है उसमें हम सी लिख देते हैं दोनों ही साइड्स पे, बैंक रिसीट्स की साइड पे भी और पेमेंट की साइड पे भी, जहां हमने बैंक कॉलम और जो कैश कॉलम है वहां पे हमने इसको किया है। आगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कैश पेड इनटू बैंक, तो ये भी जो है एक कॉन्ट्रा एंट्री के थ्रू ही रिकॉर्ड होगा। जैसे कि हमने अभी समझा कि इसमें भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो सबसे पहले जो है जो भी अमाउंट ऑफ कैश जो है वो कम हो रहा है क्योंकि कैश हमने पे किया है, और सेकेंडली जो कैश बैंक में है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों ही अकाउंट में जो है वो कैश बुक में है हमारे, और कैश एट बैंक हमारा बढ़ रहा है, इसलिए अमाउंट को हम लिखेंगे बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे टू कैश लिखते हुए पर्टिकुलर्स कॉलम में, और कैश इन हैंड जो हमारा रिड्यूस हो रहा है इसलिए हम अमाउंट को लिखेंगे वहां पर क्रेडिट साइड पे बाय बैंक लिखते हुए पर्टिकुलर्स कॉलम में। और क्योंकि ये भी ऊपर जैसे हमने समझा इससे पहले जैसे हमने समझा उसी की तरह ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए इसके लिए भी हम कैपिटल सी से इसको डिनोट करेंगे और ये हम LF या फिर अपने लेजर फोलियो कॉलम में हम इसको मेंशन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिसऑनर ऑफ अ चेक। अगर कोई भी चेक जो है वो बैंक को भेजा जाए और वो डिसऑनर हो जाता है, बैंक उसे वापस भेज देता है, तो अमाउंट जो है वो एंटर किया जाएगा बैंक कॉलम में जो कि ऑन क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स कॉलम में जो नेम जो पार्टी का नाम है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जिसने कि चेक दिया है। तो हमने इस सबसे पहले केस में हमने क्या देखा कि चेक जो है वो जो बैंक को भेजा गया है वो डिसऑनर हो जाता है और बैंक उसे वापस भेज देता है। लेकिन हमारा सेकेंड केस भी हो सकता है डिसऑनर का, जहां की चेक जो है इश्यू किया गया है एक फर्म ने इशू किया है और एक क्रेडिटर को इशू किया है और वो डिसऑनर हो जाता है और वो क्रेडिटर जो है उसे रिटर्न कर देता है। इस केस में इसको हम बैंक में एंटर करेंगे बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे, और जो नाम होता है क्रेडिटर का जो नाम होता है क्रेडिटर का उसे हम पर्टिकुलर्स कॉलम में मेंशन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम लिखेंगे वो बैंक चार्जेस है। बैंक जो है कुछ मनी चार्ज करता है, जो सर्विसेज उसे प्रोवाइड की जाती हैं, जो प्रोवाइड करता है बैंक उसके लिए में कुछ पैसे बैंक चार्ज करता है, और हर 6 महीने के बाद जो है अमाउंट बैंक चार्ज करता है, और ये अमाउंट जो है ये बैंक कॉलम में क्रेडिट साइट पे लिखा जाता है क्योंकि जो कैश एट बैंक है वो हम देखते हैं कि वो कम हो रहा है, तो पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय बैंक चार्जेस अकाउंट लिखा जाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक। तो कुछ ऐसे चेक भी हो सकते हैं जो रिसीव तो हुए हैं लेकिन वो अभी बैंक को भेजे नहीं गए हैं, तो ऐसे चेक के साथ हम क्या करते हैं इन्हें हम क्रॉस कर देते हैं और इसको हम सेफली रखते हैं ताकि इसको स्ट्रेट अवे हम बैंक भेज सकें और जहां पे इसकी एंट्री हो जाए नेक्स्ट डे जब इसको बैंक में भेजा जाए, क्योंकि चेक क्रॉस हो जाता है तो कोई उसमें मुश्किल नहीं रहती कि वो उसका मिसयूज हो सकता है। यही जो है ये बेस्ट तरीका होता है इसको करने का। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एंडोर्समेंट ऑफ चेक। तो जब भी हम चेक रिसीव करते हैं और अगर हमें उसको एंडोर्स करना है तो उसको हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करते और उसकी जगह हम उसको जो कैश कॉलम होता है उसमें हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में, और उसी के साथ साथ जो कैश कॉलम होता है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक का उसमें भी हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बैलेंसिंग ऑफ चेकबुक, सॉरी बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। तो जो दोनों ही कैश कॉलम और बैंक कॉलम होते हैं उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। जो टोटल होता है कैश कॉलम का, जैसा कि हमने उसमें भी देखा था जो हमने सिंपल कैश बुक बनाई थी, कि जो वो जनरली हमने देखा कि जो टोटल है कैश कॉलम का डेबिट साइड का वो ज्यादा रहता है क्रेडिट साइड से, और इसको हम पहले टोटल करते हैं और उसके सामने फिर हम क्रेडिट साइड का भी टोटल करते हैं, और जो भी बैलेंस होता है वो हम क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन करके वहां पर रिकॉर्ड कर देते हैं, और यही बैलेंस को हम नेक्स्ट डेट में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं बाय, मतलब जो भी हमने बैलेंस कैरेट डाउन किया है इसको हम नेक्स्ट जो हमारा साइकिल शुरू होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम इसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर हम बैंक कॉलम की बात करें तो जरूरी नहीं है कि उसमें कैश बुक की तरह डेबिट साइड ही, जो हमारी रिसीट साइड है वो ही ज्यादा होगी। बैंक के केस में किसी भी साइड का टोटल जो है ज्यादा हो सकता है। इन केस अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो इसका मतलब यह है कि बैंक के पास में बैलेंस है, और बैलेंसिंग हम उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हमने कैश बुक की बैलेंसिंग करी है। अगर बैंक का जब हम टोटल करते हैं और हम देखते हैं कि जो क्रेडिट साइड है बैंक कॉलम का वो ज्यादा है, इसका मतलब है कि बैंक में ओवरड्राफ्ट है, और जो है मतलब बैंक में ओवरड्राफ्ट है जो बैंक में अवेलेबल बैलेंस नहीं है। तो लर्नर्स, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे कि किस तरह से एंट्रीज करी हैं, और जो आपने भी जो अभी तक सीखा वो आपको भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, इसको हम एंटर करेंगे जो हमारी टू कॉलम कैश बुक है, मतलब कि इसमें एक जो है हमारा कैश कॉलम है और दूसरा जो है हमारा बैंक कॉलम है। तो ये हमारी टू कॉलम कैश बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को। तो अगर हम 1 जून को देखें तो इसमें है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, तो इसमें भी जो हमने परफॉर्मा बनाया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने सिंपल कैश बुक का पहले बनाया था, बस सिर्फ इतना फर्क है कि अब इसमें एक अमाउंट के कॉलम की जगह दोनों साइड पे, रिसीट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी दो दो कॉलम है। एक कॉलम जो है वो हमारा कैश का है और जो दूसरा कॉलम है वो हमारा बैंक का है। तो जब हमने 1 जून को एंट्री कर हमारा ट्रांजैक्शन हमें दिया हुआ है कि बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, मतलब ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको हम रिसीट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे और 12,000 रुपीज हम इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा है बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक, अब ये बैंक का बैलेंस है तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमारी फर्स्ट एंट्री है उसी में हम कैश के कॉलम में 12,000 रुपीज मेंशन करेंगे, और जो बैंक का कॉलम है वहीं पे ही हम 1,80,000 रुपीज मेंशन कर देंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा कैश का बैलेंस 12,000 रुपए है और बैंक का 1,80,000 रुपए है। नेक्स्ट है बॉट गुड्स बाय चेक, अब गुड्स खरीदे गए हैं, जब गुड्स की खरीद हुई है 15,000 रुपए से खरीद हुई है, परचेज किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है हमने पैसे दिए हैं, और चेक से हुई है मतलब कि जो एंट्री हम करेंगे वो बैंक के कॉलम में करेंगे। तो बैंक के कॉलम में एंट्री करी हमने परचेज अकाउंट 15,000 रुपीज से, ये हमने पेमेंट साइड पे एंट्री करी। उसके बाद लर्नर्स जो हम इसमें नेक्स्ट एंट्री दी है वो दी है बॉट गुड्स बाय कैश, तो जो 8,000 रुपीज के हमने जो गुड्स खरीदे हैं वो हमने कैश से खरीदे हैं, तो फिर से हम परचेजेस की एंट्री करेंगे, बट ये जो 8,000 रुपीज है ये हम कैश अकाउंट में इसको मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है कि गुड्स कैश में खरीदे गए हैं। नेक्स्ट जून 5 में कैश सेल्स, सेल हुई है, जब सेल होती है तो रिसीट होती है और पेमेंट रिसीव होती है, तो इसको हम रिसीट्स कॉलम में एंट्री करेंगे, और इसका जो अमाउंट है 8,000 रुपीज है, इसलिए हम 8,000 रुपीज जो है दिखाएंगे, और जो हमारी गुड्स हमारे जो सेल किए गए हैं वो चेक से भी सेल किए गए हैं, और 10,000 रुपए के हमने चेक से सेल किए हैं, तो इस जो हमारा बैंक कॉलम है उसमें जो हम अमाउंट दिखाएंगे वो हम 10,000 रुपीज दिखाएंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डेट पे देखें जून 9 में, तो वेजेस पे की गई हैं, कैश में वेजेस पे की गई हैं और 400 रुपीज इसको हमने पे किया है, तो हम पेमेंट कॉलम में, क्योंकि ये कैश की है तो हम कैश के कॉलम में वेजेस हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे, और जो अमाउंट है 400 रुपीज वो हम कैश कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट हमने सैलरी पे की है, बट सैलरी जो है वो हमने चेक से पे की है और 8000 रुपीज पे की है. तो पेमेंट के में हम परचेजेस के अंडर में सैलरी लिखेंगे, और जो अमाउंट 8000 रुपीज है वो हम बैंक के कॉलम में दर्शाएंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट है, June 21st को पेड फॉर स्टेशनरी बाय चेक. अभी हमने पेमेंट करी है और हमने पेमेंट जो है वो चेक से करी है, तो स्टेशनरी हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे, और क्योंकि ये पेमेंट हमने चेक से करी है तो हम 1200 रुपए बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है पेड टू नरेश बाय चेक. अगेन ये एक पेमेंट है, हम इसको पेमेंट साइड में दिखाएंगे, और क्योंकि चेक से हुई है तो ये जो अमाउंट है हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स कॉलम में नरेश, और जो हमारा बैंक कॉलम है वहां पे हम 1280 रुपीज जो पेमेंट की है नरेश को बाय चेक ये दिखाएंगे. नेक्स्ट इस कैश परचेजेस, तो जो कैश परचेज की गई है वो की गई है 8000 रुपीज की. तो ये जो 8000 रुपीज है इसे हम June 22 को परचेज किया है, तो हमने पैसा दिया है, पेमेंट की है, तो परचेज हम लिख के पेमेंट में, और फिर 8000 रुपीज हम यहाँ पर दिखाएंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिसीव्ड चेक फ्रॉम गोपाल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक. सो दिस इज ऑन June 23. तो ये जो हमने रिसीव किया है तो ये हम 1880 रुपीज रिसीट साइड में हम इसको दिखाएंगे, और यहाँ पे हम ये अमाउंट मेंशन करेंगे. उसके बाद ड्राइंग्स जो है वो कैश में की गई है पर्सनल यूज के लिए, इस ड्राइंग्स को हम मेंशन करेंगे 4000 रुपीज को पेमेंट साइट पे. उसके बाद परचेजेस जो हमने करी है वो चेक से करी हैं, तो ये अमाउंट भी हम पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में इसको मेंशन करेंगे 9500. फिर हमने चेक रिसीव किया है सोहन से 4600 रुपीज का, इसको हम रिसीट साइड पे दिखाएंगे. और पेड रेंट बाय चेक फॉर द मंथ, ये 1200 रुपए हम जो है इसको June 30 को हम इसको पेमेंट साइड में दिखाएंगे. फिर हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, और जो हमारी बैलेंसिंग फिगर्स हैं दोनों के लिए हम निकाल लेंगे, कैश के लिए भी बैंक के लिए भी, और यही जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हम कैरेट डाउन करेंगे. सो लर्नर्स, आपने जाना कि किस तरह से हम सिंपल कैश बुक और हम अपनी जो बैंक कॉलम कैश बुक है वो बनाते हैं. इसी के साथ जो पिटी कैश बुक है वो भी आप जान लीजिए कि किस तरह से बनाई जाती है. उसको इम्प्रेस्ड बेसिस पे बनाया जाता है ये सिस्टम जो है. इनिशियली इसमें होता क्या है कि पिटी कैशियर जो कि हेड कैशियर के साथ एक असिस्टेंट की तरह अटैच किया जाता है, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाता है, और वो जो चाहिए छोटी मोटी पेमेंट्स हैं जैसे कन्वेंस की गई या फिर रिफ्रेशमेंट मंगवाया, कोई पोस्टेज स्टैम्प मंगवाया, कोरियर है, टेलीग्राम है, कार्टेज है, इस तरह की जो पेमेंट्स हैं इनका पेमेंट करते हैं, और जब उनको लगता है कि सारा पैसा खर्च हो गया है, पैसे का यूज हो गया है, तो वो ये जो सारे बिल्स हैं जो वाउचर्स हैं ये सब मेन कैशियर को दे देते हैं, और जो मेन कैशियर है वो अमाउंट जो है वो पिटी कैशियर को रिइंबर्स कर देते हैं. तो इस तरह से इसकी पेमेंट होती है. सो लर्नर्स, आई होप द लेक्चर वॉज यूजफुल. थैंक यू सो मच.